निसा उकुम हर्फुल लकुम, औरतें खेती हैं तुम्हारी। ये क्यों कहा गया औरतें तुम्हारी खेती हैं? इसलिए कि औरत और मर्द का जो ताल्लुक है ना, वो बहुत मुमासलत रखता है एक आदमी का अपनी खेती के साथ जो ताल्लुक है। आदमी अपनी खेती में बीज डालता है, किसान ऐसे ही करता है ना, बीज डालता है, खेती को तैयार करता है पहले, फिर उसमें बीज डालता है, फिर उससे उसकी फसल उगती है। सच ब्यूटीफुल एग्जाम्पल जो कि बिल्कुल डिपिक्ट करती है उस रिलेशनशिप को जो शौहर और बीवी का। बहुत सारी औरतें इसको बहुत माइंड करती हैं, हमें क्यों ऐसे कहा गया। लेकिन देखें, इन अल्फाज को कह के औरत की एक वैल्यू बताई गई, आदमी के नजदीक इसकी खेती की बहुत वैल्यू होती है। आदमी जो जमीनों वाले हैं, वो अपने आप को कहते हैं हम जमींदार हैं, बड़े फखर से, यानी हम जमीन वाले हैं। तो खेती उनकी जमीनें होती हैं, जो खेतियां होती हैं उनकी, और जो जिसमें जिस जमीन में फसल उगती हो उसके ऊपर तो बहुत ही बड़े वो अपने आप को समझते हैं कि मेरे पास तो खेती है ऐसी, मेरे पास तो जमीनें हैं, बंजर जमीनों की नहीं बात हो रही, खेती। तो जिसके पास जमीन हो वो तो अपने आप को प्राउड फील करता है, और यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि हमें खेती क्यों कहा गया। तो देखिए इसके अंदर बहुत खूबसूरत इशारा है, खेती के अंदर वो बीज डालेगा और उगेगा। इसी तरह मर्द अपनी बीवी के साथ जो ताल्लुक करता है वो भी बीज डालता है, पहले उसको तैयार करता है, फिर बीज डालता है, फिर उससे अल्लाह ताला उसको औलाद की सूरत में एक फसल देता है। कितना प्यारा, एक कोई सोच भी नहीं सकता कि कितना प्यारी एक मुमासलत है दोनों में। और खेती की वैल्यू होती है तो औरत वैल्यूबल है। तुम्हें कोई इस तरह थोड़ी कहा गया, कोई ऐसी चीज बताया गया, कोई बिल्कुल हकीर और घटिया चीज तो नहीं बताया गया, तुम्हें एक वैल्यूबल चीज के साथ मुमासलत दी गई। और फिर जब किसान के आगे उसकी फसल आती है तो वो कितना खुश होता है, उसको कितनी प्यारी लगती है। इस तरह आदमी को अपनी औलाद से कितनी मोहब्बत होती है, ठीक है। और खेती मल्टीपल टाइम्स फल देती है ना, उससे इसी तरह औरत से कई बच्चे जन्म लेते हैं। तो ये तो प्यारी एग्जाम्पल है, उसको अपने खिलाफ कह दिया कि हम, क्योंकि आज औरत की आजादी के ऊपर इतनी बात हो रही है ना कि ये भी हमारी आजादी है कि हम बच्चा पैदा करें या ना करें, हम मर्द को करीब आने दें या ना दें। हालांकि औरत को ये समझना चाहिए कि जब निकाह हो जाता है तो निकाह में असल में आपने एक कॉन्ट्रैक्ट किया है, एक एक इस चीज पे रजामंदी की है कि वो मर्द आपसे फायदा उठा सके और आप उससे फायदा उठा सके, ठीक है। तो दोनों ने एक दूसरे से फायदा उठाने का जो अल्लाह ताला ने बाउंड्री सेट की है उसके विदिन एक दूसरे से फायदा उठाने का एक मुआहदा कर लिया। इसके बाद ये कहना कि नहीं अब किसी का राइट नहीं है मेरे ऊपर, आपका राइट उसकी जेब पे है कि उसके पैसे में से खर्च करें, लेकिन उसका राइट नहीं है। आपका राइट अगर है कि वो आपको अपने घर में अच्छी तरह बसाए, लेकिन उसका राइट आपके ऊपर कुछ नहीं। इस तरह से तो नहीं होता, दोनों के हकूक और फराइज हैं, और आगे इसके ऊपर बात होगी। तो ये चीज को समझना चाहिए कि निकाह का मतलब क्या है, निकाह करने पे क्या जिम्मेदारियां आयद होती हैं, क्या हमारे हकूक हैं और क्या हमारे फराइज हैं। आजादी की सूरत में ये कह देना कि अच्छा शौहर तो हमारे पर कोई हक नहीं रखता, और अगर आज की औरत ये सोचती है कि शादी ही इटसेल्फ एक मुसीबत है और हमें नहीं इस मुसीबत के अंदर पड़ना, तो याद रखिए कि अल्लाह ताला ने ये जो हमारे लिए इतनी बड़ी ब्लेसिंग रखी है ना निकाह की सूरत में, ये आप अंदाजा ही नहीं कर सकते कि कितनी बड़ी इसके अंदर अल्लाह ताला की तरफ से रहमत है। क्योंकि जिन सोसाइटीज के अंदर शादियां मुश्किल हैं या शादियां करने को वो लोग अपने लिए एक मुसीबत समझते हैं, आज उनके हालात देखें, जरा देर के लिए कंपेयर करें एक मुसलमान लड़की और जब उसकी शादी होती है उसका शौहर उसको अपने घर लेकर आता है, उसकी तहफ्फुज को यकीनी बनाता है, उसका माल, उसकी जान, उसकी इज्जत का तहफ्फुज करना इस आदमी की जिम्मेदारी होती है। माँ बाप तो अपने घर से रुखसत कर देते हैं, अब ये आदमी की जिम्मेदारी है वो हर तरह से इसको सिक्योरिटी दे, इसकी सेफ्टी का इंतजाम करे, और उसके खाने पीने का इंतजाम करना, उसकी रहाइश का इंतजाम करना, उसकी सिक्योरिटी का इंतजाम करना, ये मर्द की जिम्मेदारी है। औरत को नहीं कहा गया तुम जाओ जाके बाहर कमाओ और लेकर आओ, तुमने बिल्स पे करने और मैं ग्रोसरी करूंगा। ये कब, ये तो इन्होंने ये मुसलमान तो असल में अपने दीन को खुद ही नहीं जानते ना, तो इसलिए। और औरतें ये बेचारी अगर अपने दीन को खुद पढ़ लेती तो ये कहती हैं कि हमारे लिए इस्लाम के कवानीन लेकर आओ, क्योंकि इसमें हमारे लिए तो बहुत ज्यादा फायदे हैं और दूसरी तरफ तो हमारा नुकसान है। ये सब चीजें आदमी प्रोवाइड करेगा, बिल आदमी पे करेगा, ग्रोसरी आदमी करेगा, वो सब चीजें, उसकी इलाज मुआलजा, उसके कपड़ा, उसका खाना, उसका पीना, उसका सब चीजों का आदमी जिम्मेदार है। इसके पर कोई एक्सपेंस की लाइबिलिटी है ही नहीं, ठीक है? सिक्योरिटी अपनी के लिए कोई लाइबिलिटी नहीं। आदमी का काम है कि वो ये देखे कि कोई और मर्द नहीं इसको कोई कुछ कह सकता है, ये मेरी बीवी है। फिर उससे जो वो फायदा उठाता है तो उससे जो औलाद आगे पैदा होती है उसको वो आदमी अपना नाम देता है, उनको ऐसे छोड़ के नहीं चला जाता, उनको अपना नाम देता है। उस औलाद का भी नाम नफका इस आदमी के जिम्मे है, तो औरत को तो कुछ करना नहीं पड़ा। जबकि आप दूसरी तरफ देख लें, एक औरत एक आदमी को खुद ढूंढती है, पहले वो वली तो उसका है नहीं, बेचारी खुद ढूंढती है, फिर वो उसके साथ रहता है। अभी वो कहता मैंने शादी नहीं करनी तुम्हारे साथ, पहले मैं रह के देखूंगा तुम कैसी हो। उससे खूब फायदा उठाता है, उससे उसका बच्चा भी पैदा हो जाता है। फिर एक दिन वो आदमी कहता है मुझे कोई और पसंद आ गई मैं जा रहा हूँ। भाई औरत रोती रहती है, मेरे सामने एक लड़की, बहुत सालों पहले एक लड़की थी, अमेरिकन ही थी, वाइट, तो एक दिन वो बहुत दुखी थी, वो हमारे नेबर में रहती थी, बहुत ज्यादा दुखी थी। तो मैंने उसको कहा तुम्हें क्या हुआ, वो रो पड़ी, कहती मेरा बॉयफ्रेंड जो इतने अरसे से मेरे साथ रहता था वो मुझे छोड़ के चला गया। और वो इतना रो रही थी और उसको ये था कि अब मैं आगे किसके को ढूंढूंगी, कहाँ, उसके ऊपर एक और रिस्पॉन्सिबिलिटी पड़ गई, कहाँ किसी को ढूंढेगी, अभी तो उसके औलाद नहीं थी कोई। लेकिन अक्सर आप देखते हैं कि उनके बच्चा पैदा हो जाता है, फिर अब ये माँ ही बच्चे को पाले, वो तो चला गया छोड़ के, अब वो दूसरा कोई और ढूंढती है आदमी, फिर उसको घर लेकर आती है, उसको अपने घर में रखती है, फिर उसके बाद वो भी इससे ताल्लुक करता है, इसको अच्छी तरह इस्तेमाल करता है, फिर उसके बाद वो भी कहीं और चला जाता है। कोई ही जाके उनको ऐसा मिलता है जा किस उम्र में जाके जो कहता है कि अच्छा मैं तुझसे शादी करने को, मैं तुझे प्रपोज करता हूँ, तो फिर आप देखा करें कि उनके रोना कैसे होता है, उनके कैसे आंसू होते हैं जब वो कह देता है कि मैं तुझे प्रपोज करता हूँ। शुक्र है हमें उससे कोई शादी करने को तैयार हुआ ना, वो बच्चों को देखने को तैयार होते हैं वो फेंक के चले जाते हैं माँ के ऊपर, ना वो उनके साथ शादी करने को तैयार होते हैं, हर एक आता है इस्तेमाल करता है और चला जाता है। हमारी औरतें इनकी तरह बनना चाहती हैं, हमें ऐसी आजादी चाहिए, आजादी नहीं है ये, तो अपने ऊपर मुसीबत है, ये आजादी नहीं है, ये तो अपना नुकसान है, ये तो गुलामी है, वो उसकी गुलाम बन के रहती है। अल्लाह ताला ने औरत को कितना मकाम दिया देख लें आप, यहाँ पे ये कितनी उसको दिया कि ये हर्ष है तुम्हारी, तू हर्षकुम अन्ना शे, तुम आओ अपनी खेती में जहां से चाहो तुम, यानी जब चाहो तुम, जैसे चाहो तुम, यानी जिस पोजीशन में तुम चाहो, जैसे मैंने आपको बता दिया कि जैसे अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि जिस पोजीशन में भी आओ, लेटे बैठे खड़े और जिस टाइम पे भी, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक औरत अगर आटा भी गूंदे तंदूर पे भी बैठी हुई और उसका शौहर उसको बुलाता है अपनी जरूरत के लिए तो वो भी छोड़ दे, यानी वो ये नहीं कहे मैं तो उस वक्त बिजी हूं। अन्ना शे तुम, जिस टाइम पे या जिस तरह से भी वो चाहता है, लेकिन वकद्दिमूली अनफुसिकुम, लेकिन अपने लिए आगे भेजो, यानी आपको जैसे मैंने अभी समझा दिया सबको, मेरे ख्याल में इसमें कोई ज्यादा इस और बताने की जरूरत नहीं है कि सबको समझ आ गई होगी कि जगह एक होनी चाहिए, ओपनिंग वो ही हो, उसके अलावा और रास्ते इख्तियार ना किए जाएं, ये चीज को हमें समझना है। और बाकी कोई भी तरह से हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जो अल्लाह ताला ने जिस चीज को जिस काम के लिए बनाया है ना, जहां से औलाद पैदा होनी है, जहां से हया जाता है, वो ही जगह इस्तेमाल की जाए। इसके अलावा जो जो दूसरी चीजें हैं वो सही नहीं है, वो अल्लाह ताला के हाँ गुनाह के काम है। वकद्दिमू लि अनफुसिकुम, आगे भेजो अपने नफ्सों के लिए, यानी दो माने हैं इसके, एक तो अपने लिए आगे भेजो, यानी ये ताल्लुक करके अपने लिए औलाद के सूरत में अपने लिए आगे भेजो, यानी औलाद का हसूल इसका मकसद होना चाहिए कि हमारी औलाद हो, क्योंकि औलाद आगे आप अपने लिए भेजते हैं ना, यानी आपके बुढ़ापे के लिए औलाद की आपको जरूरत होती है, वो आपकी केयर करती है। दूसरा मतलब है कि आखरत के लिए आगे भेजो, यानी सिर्फ यही चीज को नहीं समझो बल्कि अपनी आखरत के लिए बनाओ इस चीज को भी, और अल्लाह को ना भूल जाना इस सब के अंदर। वत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो, वालमु अन्नकुम मुलाकुहु व बशीरिल मुमिनीन, जान लेना तुम अल्लाह से तुम मुलाकात करने वाले, इस बात को ना भूल जाना, इस बात को ना भूलो कि तुम्हें अल्लाह से मिलना है एक दिन। इसके लिए तुम आगे भेजो, यानी जो हराम चीजें हैं ना उनसे बचो, जो चीज अल्लाह ने मना कर दी है ना उससे बचो और नेकियां करो ताकि सवाब आगे जाए। औलाद भी है तो उसको सदका जारिया बनाओ ताकि तुम्हारे लिए आगे काम आने वाली बने। कद्दीमू ली अनफुसकुम, अपने लिए आगे भेजो, तो औलाद की सूरत में भी आप आगे भेज दें और नेकी करके भी आप आगे भेज दें ना, यही दो चीजें हैं ना जो सदका जारिया भी बनती हैं, नेकी भी सदका जारिया बन जाती है, नेकी भी आप अपने लिए आगे भी भेजते हैं, नेकियां आपके अकाउंट में डिपॉजिट हो जाती हैं, और औलाद की सूरत में भी है, इस दुनिया में भी बुढ़ापे का सहारा बनती है, और नेक औलाद है तो सदका जारिया भी बनती है, तो अपने लिए आगे आपने भेज दिया ना इसकी सूरत में, तो ये दो माने हो गए इसके। तो अल्लाह से डरो यानी तकवा, तकवा यहां पे भी इस जगह पे भी तकवा का कहा गया, क्यों? इसलिए कि ये भी देखें जो जो भी मियां बीबी के ताल्लुकात हैं, जो ये सब काम हैं, ये कोई और नहीं जान सकता, इसमें इंसान को देखना चाहिए अल्लाह मुझे देख रहा है, अल्लाह ना कहीं इस काम से नाराज हो जाए। अगर स्पाउसेस दोनों कोई काम करने पे एक दूसरे से राजी भी हैं और कोई ऐसे काम करते हैं जो कि सही नहीं है, लेकिन ये समझना चाहिए कि अल्लाह ताला वो इस चीज को कैसे देखता है। ये नहीं कि दूसरा राजी है तो ठीक है हम कोई उल्टे काम कर ले, जैसे मैंने अभी आपको बताया, अगर औरत मना नहीं कर रही तो शौहर कोई और रास्ता भी इख्तियार कर ले, या आजकल और बहुत सी चीजें ऐसी आ गई हैं जो इस्तेमाल की जाती हैं इन कामों के लिए। मुझे क्लियर कहना पड़ता है, ऐसी ऐसे टॉयज हैं या ऐसी गंदी फिल्में हैं या ऐसी ऐसी कुछ चीजें हैं, ये सब सख्त गुनाह के काम है। तो तुम डरो अल्लाह से, तुम्हें नहीं पता कि अल्लाह देख रहा है तुम्हें और तुम्हें उससे मुलाकात करनी है, क्या करोगे जब तुम उसके सामने खड़े होगे, कैसे उसको जवाब दोगे इन कामों पे? वबशिरिल मुमिनीन, और ईमान वालों को खुशखबरी दे दो जो इन अहकामात को मान लेते हैं, इन पे ईमान लाते हैं, जो समझ जाते हैं, जो इन चीजों को छोड़ देते हैं, वो उन जो गलत काम है उनको छोड़ देते हैं और अल्लाह ताला की बात को मान लेते हैं, उनके लिए खुशखबरी है। ठीक है, जिन चीजों को अल्लाह ने हराम किया या जिनको गुनाह बताया या जिनसे मना फरमाया, उनसे मना हो जाना और उसके ऊपर तौबा कर लेना। अगर पास्ट में हो भी चुका है तो अल्लाह ताला तौबा करने वालों से मोहब्बत करता है, और ये जो कुछ ऐसे काम है जो गंदगी के काम है, इंसान की फितरत बताती है कि ये गंदे हैं, उसके लिए किसी से फतवा लेने की जरूरत नहीं है, किसी से पूछने की जरूरत नहीं, आपका अंदर ही आपको बताएगा कि ये काम गलत है, ये काम सही नहीं है, ये जगह इस चीज काम के लिए नहीं है, अंदर बताता है, उससे बाज आ जाए इंसान ना, कि लोगों की देखा देखी जो काफिर करते हैं उनके तरीके, उनके तो कोई कोई लिमिट ही नहीं है ना, उन्होंने को तो उन्होंने तो ना जानवरों को छोड़ा ना अपनी जिन्स के लोगों को छोड़ा, किसी को भी नहीं छोड़ा, वो उनके तो हर काम उल्टे हैं, उनके पास कोई रिस्ट्रिक्शन थोड़ी है ना, उन्होंने हिदायत अल्लाह की किताब से लेनी है ना, उनको कोई कोई शरीयत की पाबंदी है ना, उनको कोई भी चीज की परवाह नहीं है, तो वो तो जो मर्जी करें, लेकिन एक मुसलमान तो ऐसे नहीं कर सकता। तो ईमान वालों को खुशखबरी दो, बाकी जिधर मर्जी जाए, जिन्होंने मानना ही नहीं उनका क्या हो सकता है, खुशखबरी ईमान वालों के लिए जो मान जाए। देखें जो ये वक्त भी होता है ना, इसमें भी शैतान बहुत इंसान के ऊपर हावी होता है, इसी वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ भी सिखाई है कि जब ऐसा इरादा हो किसी का तो ये दुआ पढ़ ले, उससे पहले ही दुआ पढ़ ले, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रज़कना, तो ये कि ऐ अल्लाह तू हमें और हमारी औलाद को शैतान से बचा ले। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर उससे कोई बच्चा पैदा होगा इस रिलेशनशिप से तो उसको शैतान हरगिज कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा, फिर यानी उस वक्त से शैतान से हिफाजत करनी है। तो ये दोनों आयतें उम्मीद समझ आ गई होंगी, क्योंकि औरतों से मुतल्लिक हैं, हैज की भी बातें, बहुत जरूरी है समझनी। और ये अगली बात भी, खेती में जाने के तरीके का इख्तियार है, जगह बदलने का इख्तियार नहीं है, ठीक है। और क्या चीज जरूरी है, कद्दीमूली अनफुसिकुम, यानी ये काम सिर्फ अपनी इंसान एक अपनी लज्जत के लिए तो करता है, लेकिन ये सिर्फ लज्जत का ही सामान ना हो, बल्कि इससे मकसद होना चाहिए कि औलाद हासिल हो। वला तजालुल्लाह उर्दतल लिअयमानिकुम, और अल्लाह को ना तुम बनाओ ढाल अपनी कस्मों के लिए। अंत बरु तत्तकु तुस्लिहु बैन नास, कि तुम नेकी करो के यानी ना तुम नेकी करो और ना तुम तकवा इख्तियार करो, ना तुम सुलह कराओगे लोगों के दरमियान। यहाँ पे असल में ना जो है ना वो हजफ है, यानी के अल्लाह ताला की कसम खा के और नेकी के कामों से रुकना, तकवा के कामों से रुकना, सुलह कराने से रुकना, ये मत करो, तुम अल्लाह के नाम को क्यों ढाल बनाते हो। यानी मना किया गया ऐसी कसमें खाने से, कि जाहिर है कसम तो अल्लाह के नाम की खाई जाती है, हर मुसलमान को पता है कि अल्लाह ताला के नाम के अलावा आप किसी के नाम की कसम नहीं खा सकते। मुझे रसूल की कसम, मुझे मेरे बेटे की कसम, मुझे मेरी बीवी की कसम, तेरी जान की कसम, मेरी जान की, ये कसमें शिर्क है। अगर इस तरह की किसी और के नाम की कसम खाई जाए, ये भी शिर्क है। सिर्फ कसम अल्लाह के नाम की खाई जाती है और खाई जा सकती है। तो जब आप कसम खाते हो, यानी जाहिर अल्लाह के नाम की, तो इन नेकी के कामों से रुकने की कसम मत खाया करो। अरे कोई इंसान कह दे आज से मैं तेरे से कभी बात नहीं करूंगा, अल्लाह की कसम है कि मेरा तेरे से कोई ताल्लुक नहीं, या कोई कह दे हमने तो बड़ी सुलह करा के देखी, हम ही बुरे बने, खुदा की कसम अब मैं कभी नहीं किसी में सुलह कराऊंगी, मेरी तो तौबा है। या कोई कह दे कि मैं तो कभी किसी उनके साथ मिलना जुलना मेरा खत्म है, मैं आदमी अपनी बीवी को कह दे कि मैं कसम खाता हूं कि मैं तेरी माँ से नहीं आज के बाद बात करूंगा, या इस तरह की कोई कसमें, तो ये सब नेकी से रुकने की कसमें हैं, ये सब बुराइयों की कसमें हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया अल्लाह के नाम को तुम यूज करते हो बुराइयों की कसमें खाने पे, नेकियों से रुकने के लिए, सुलह ना कराने के लिए। तो अल्लाह की कसमों को ढाल ना बनाओ, अल्लाह का नाम है इसलिए नहीं है कि तुम नेकी से रुकने के लिए उसको इस्तेमाल करो क्या। तो यानी आप देखें, बहुत दफा हम गुस्से में आके इस तरह की बातें कर जाते हैं, तो अगर कभी किसी को ऐसा हो तो फिर इसका कफारा अदा करना चाहिए। बाज तो कहते हैं कि अगर आपने ऐसी कसम खाई है जो है ही बुरी कसम, बुराई के ऊपर या नेकी से रुकने की, तो कोई कफारे की जरूरत नहीं। बस कहते नहीं, कफारा देना चाहिए, और कफारा सूरह मायदा आयत 89 में है कि 10 मिसकीनों को आप खाना खिलाएं, या 10 मिसकीनों को आप कपड़ा पहना दें, या गुलाम आजाद करें, जो तो नहीं आज हो सकता, लेकिन अगर कोई नहीं अफोर्ड कर सकता, 10 मिसकीनों को खाना खिलाना नहीं अफोर्ड कर सकता, या सेकेंड नंबर पे चॉइस है आपके पास 10 मिसकीनों को कपड़ा पहनाना, वो भी नहीं अफोर्ड कर सकता, तो फिर वो 3 रोजे रख ले। तो फर्स्ट ऑप्शन तो क्या है, 10 मिसकीनों को खाना खिलाएं, जो कि सब खिला सकते हैं, मेरा ख्याल है कोई ऐसा मसला नहीं है। तो ये करके अपनी कसम को तोड़ देना चाहिए, ना कि उस पे रहे कि नहीं जी हमने तो कसम खा ली थी, अब तो हमने नहीं करना ये काम, नहीं, ठीक है। तो इसमें आप देखें, अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु की मिसाल मिलती है कि जब उनकी बेटी आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा पे तुहमत लगी थी, तो उनमें उनके एक रिश्तेदार मिस्ताह भी शामिल थे, और था क्या कि मिस्ताह की तो घर का सारा खर्चा, माली इमदाद ये अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु करते थे। सोचिए, उनके घर का खर्चा ये चलाते थे, यानी एक समझ लिया होता है ना, जैसे खानदान में कोई गरीब रिश्तेदार है तो एक उनकी सारी जिम्मेदारी उसने ली होती है। आप अंदाजा कीजिए एक बाप के लिए कितनी हर्टफुल बात होगी कि उसकी बेटी के ऊपर, जो मासूम है, उनके ऊपर इल्जाम लगाने में वो रिश्तेदार भी शामिल हैं जिनके घर का ही खर्चा ये चलाते हैं। आप देखिए ना, हमारे रिश्तेदारों में से कोई ऐसा हो जिसके हम हेल्प करते हो, और वो ही आगे कहीं जाके हमारी कोई बातें कर रहा हो, या कोई हमारे बुराइयां करे, तो हमें कितना ज्यादा गुस्सा आता है। दूसरों पे तो गुस्सा आएगा, लेकिन उसके ऊपर कितना गुस्सा आएगा कि देखो मैं इसके साथ भलाई कर रहा हूं और ये मेरा क्या बदनामियां कर रहा है दुनिया जहान में। तो बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु ने कसम खा ली थी कि अब आज के बाद मैं कभी मिस्ताकी इमदाद करूंगा ही नहीं। तो अल्लाह ताला ने सूरह नूर में आयतें उतार दी थी कि क्या लोग नहीं चाहते कि अल्लाह उनको भी माफ कर दे, वो भी उनको भी चाहिए कि वो भी फिर माफ कर दें। तो उन्होंने फरमाया कि हाँ मैं चाहता हूँ अल्लाह मुझे माफ कर दे, तो फिर उन्होंने ये कसम तोड़ दी थी। तो कभी नेकी से रुकने की कसम ना खाया करें, अगर गुस्से में कभी खा ही लिया तो उसको फौरन तोड़ दें, फौरन तोड़ दें ऐसी कसम को। और बाज दफा शोहर बीबी में भी ऐसा हो जाता है और उसकी भी आगे बात आएगी, वो भी कसम खा लेते मैंने नहीं तुझसे कोई ताल्लुक रहना, मैं तुझसे बोलना नहीं, इस तरह की बात। तो यानी अल्लाह ताला नाम, जब आप कसम खाते ना तो असल में आप क्या कह रहे होते, मैं अल्लाह को गवाह बना के कहती हूँ, ये बात, ये होता है कसम का माना। तो अल्लाह को गवाह बनाए नाजायज चीज के लिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब कोई शख्स किसी बात के मुतल्लिक कसम खा ले और इसके बाद यूं महसूस करे कि उसने गलती की है तो कसम तोड़ दे और उसका कफारा दे दे, ठीक है, और फिर वो काम कर ले। वो इसी तरह नजर भी जो होती है ना, नजर वो भी एक तरह की कसम ही होती है। जैसे कोई नजर मान लेते हैं, अब मैं नजर मान ली ये हो जाएगा तो फिर मैं इतना ये करूंगी ऐसे करूंगी, अब वो मान तो लिए है, अब उसके बाद हो रहा नहीं है। मैं जी हर पीर और जुमेरात का रोजा रखा करूंगी, मैंने तो ये नजर मान ली है, मैं 100 100 नफल पढ़ूंगी या मैं ये करूं, अब बाद में उनसे होता नहीं है तो अब क्या करें, वो भी फिर ये कसम वाला कफारा ही अदा करें। पर पसंदीदा नहीं है कि आप ऐसे ही मुंह से निकाल दिया करें इस तरह की, नजर मानते हुए भी होश से काम लेना चाहिए ना। उस वक्त तो इतने जज्बाती हो जाते हैं कि बस हम पता नहीं क्या कर देंगे, और उसके बाद बिल्कुल सारी इंसान की जो मतलब जोश है वो ठंडा हो जाता है और फिर कुछ काम करने का दिल नहीं चाहता। तो अपनी कैपेसिटी हर एक को पता होती है, उतना ही बात करें जितना आप कर सकते हैं। ये नहीं होगा कि नजर मानने की वजह से कोई काम आपका हो जाना, ये भी याद रखें। ये जो हम कहते हैं ना, हम 100 नफल पढ़ेंगे, हम इतना सदका कर देंगे, हम इतने रोजे रख लेंगे, अल्लाह बस ये मैं पास हो जाऊं इसमें, अल्लाह बस ऐसे हो जाए, तो ये याद रखे अल्लाह को जरूरत नहीं ना मेरे रोजों की, ना मेरे नफलों की, तो ना मेरे सदकात की। ये नहीं कि उसने ये काम इसलिए कर देना कि उसको कोई लालच हो, ना उज़ुबिल्ला के वो आपने नफल पढ़ने तो इनकी वजह से वो आपका ये काम कर दे, नहीं, उसने जो करना है वो उसने खुद करना है। ये तो आप एक शुक्राने के तौर पे समझने के आप कर रहे होते हैं, तो इसलिए होश से नजर माना करें, ठीक है। और अगर आज तक ऐसी कोई मानी भी है तो उसका कफारा जरूर अदा कर दें, जो सूरह मायदा 89 में आप देख सकते हैं। ला युआखिदुकुमुल्लाहु बिललग्वि फी अयमानिकुम, नहीं मुआखजा करेगा तुम्हारा अल्लाह ताला लग्व पे जो तुमने कसमें खाई है। लव कसमें कौन सी होती है, जो बिला इरादा ऐसे हम बैठे बैठे कसम से अब तुम्हें ऐसे नहीं करूंगे, कसम से, जैसे आप अरब लोगों को देखते हैं बाद मात में वल्लाही वल्लाही बिल्लाही बस इस तरह करते रहते हैं, तो वो कोई इरादा तो होता नहीं है। जिनका भी तकिया कलाम कसम से बन गया होता है तो वो अब कसम थोड़ी खा रहे होते हैं, तो ऐसे ही बोलते रहते हैं। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं, अच्छा एक बात बीच में रह गई, वल्लाहु समीउन अलीम, अल्लाह ताला सुनने वाला जानने वाला है। अल्लाह ताला को पता है कि किसने कसम खाई है, किसने कसम किस नियत से खाई है, कौन को कसम को खाता ही इस नियत से कि मैंने तोड़नी है, और कौन बुराई की कसम खा रहा है, अल्लाह सब सुन रहा है और जान रहा है। अल्लाह ताला लव कसमों पे नहीं पकड़ेगा, यानी उसका मुआखजा नहीं करेगा, उसका हिसाब नहीं करेगा। इसका मतलब है जो कसमें वला कि युआखिदुकुम बिमा कसबत कुलूबुकुम, इससे आगे ये बात आ गई कि लेकिन अल्लाह मुआखजा करेगा किन कसमों का, जो तुमने दिल से खाई है, यानी इरादे के साथ नियत के साथ जो आपने खाई है, उन कसमों की अल्लाह के पास जवाबदेही करनी होगी। ये कसमें खाना ऐसे ही मामूली बात नहीं है, कई लोग असल में उनका काम ही होता है वो कसम जरूर हर चीज के अंदर उन्होंने कसम यानी पक्की कसमें खा के कर रहे होते हैं कि पक्की कसमें खा रहे होते हैं कि नहीं ऐसे, हालांकि वो ये नहीं जानते, यानी कसम भी ऐसे ही बात बात पे नहीं खानी चाहिए, वो ये नहीं पता कि कसम का भी अल्लाह ने हिसाब लेना है। तो कसम की पूछ होगी, तो अल्लाह ताला वो जो कसमें इंसान दिल से खाता है ना, यानी इरादे के साथ नियत के साथ, उनके ऊपर अल्लाह ताला मुआखजा करेगा लेकिन जो कस्में लग्व हैं बिला इरादा है उनके ऊपर कोई मुआवजा नहीं, और ये भी अल्लाह ताला का कितना बड़ा रहम है कि उनके ऊपर नहीं वो पकड़ेगा। तो वल्लाहु गफूरुन हलीम, अल्लाह ताला बख्शने वाला है, ये अल्लाह की बख्शिश है ना कि वो नहीं पकड़ता उनके ऊपर, और हलीम है, हिल्म वाला है, बुरदबार है। हिल्म का मतलब क्या होता है, यानी जो मोहलत देता है, जो पकड़ता नहीं है, फौरन नहीं पकड़ लेता कि अभी किसी ने किया उसी वक्त उसको पकड़ लिया, किसी ने गलत देखा उसको फटाफट अंधा कर दिया, किसी ने बुराई सुनी उसको बहरा कर दिया, किसी ने गलत काम किया उसका हाथ शल हो गया, ऐसे नहीं करता अल्लाह ताला, मोहलत देता उसका हिल्म है। हिल्म किससे, तहम्मुल से, जिसको हम कहते हैं तहम्मुल, बर्दाश्त, उसकी बर्दाश्त है कि वो इंसानियत को बर्दाश्त करता है, वरना ये तो इंसान तो इतना जालिम है, अपने ऊपर खुद जुल्म करता है इंसान, बुराइयां करके, गुनाह करके, दूसरों पे जुल्म करके अपने आप पे जुल्म कर रहा होता है। तो ये अल्लाह का तहम्मुल है ना कि ये जमीन चल रही है, दुनिया का निजाम चल रहा है, ये अल्लाह ताला हिल्म वाला है तो चल रहा है, वरना वाकई ये दुनिया इस काबिल नहीं है रही कि यहाँ पर कोई निजाम चले, यहाँ पे कोई इंसान चल फिर सके इस जमीन के ऊपर। ये अल्लाह का रहम है, उसका हिल्म है, उसका सबर है, और उसकी बर्दाश्त है हमारे साथ। यकीन जाने कभी कभी ऐसी वीडियोस देखते हैं, कभी ऐसी चीजें देखते हैं सामने न्यूज में कि इंसान सोचता है अल्लाह ये दुनिया कैसे चल रही है, कैसे चल रही, हमें अपने आप पे भी नहीं काबू रहता, और दिल करता है कि अभी हमारे बस में हो तो हम इनको खत्म कर दें, क्यों इतना जुल्म कर रहे हैं, कहीं बच्चों पे, कहीं औरतों पे, कहीं और, ऐसी 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 वीडियो सामने आती है कि इंसान लरज जाता है, और उसका अपना नहीं बस चल रहा होता कि वो कोई कदम उठाए, लेकिन अल्लाह ताला जो कादिर है, सोचे उसका हिल्म, और ये तो हमारे सामने तो थोड़ी चीजें आती हैं, क्या क्या हो रहा है, कहाँ कहाँ क्या चल रहा है, और किसकी क्या मजलूम की फरियादें हैं, किसकी क्या आह है, वो अल्लाह ताला तक पहुंच रही है, अल्लाह का हिल्म है ना कि अल्लाह बर्दाश्त किए हुए, तो अल्लाह ताला हलीम है, पकड़ता नहीं है जल्दी। अच्छा, अब आगे जो आयत आ रही है इसमें एक और इम्पोर्टेंट बात है, और वो भी कसम के हवाले से, क्योंकि कसम की बात चल रही थी ना, तो कसम के हवाले से ही है, और वो कसम एक खास कसम है जिसको ईला कहते हैं। ईला पहले समझने के क्या है, फिर हम आयत पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह आपको समझ में आ जाएगी। ईला कहते हैं कि जब शोहर कसम खा ले कि मैं अपनी बीवी के पास नहीं जाऊंगा, यानी इससे मेरा कोई ताल्लुक नहीं रखना, इससे कोई मेरा रिलेशनशिप यानी जिस्मानी ताल्लुक मैंने इसके साथ नहीं रखना, इसको ईला कहते हैं। अब यहां बता दिया गया कि लिल्लदीन युलूना, उन लोगों के लिए जो कसम खा लेते हैं, मिन निसाई, में अपनी बीवियों से, निसा औरतों को कहते हैं, औरत से मुराद यहाँ पे बीवी है, तरब्बु से अरबाती अशहर, इंतजार करना है 4 महीने सिर्फ उनके लिए। अब यहाँ पे लिमिट लगा दी गई कि आपके लिए 4 मंथ्स की लिमिट है, आप 4 मंथ्स तक के लिए ये कसम खा सकते हैं कि मैंने अपनी बीवी को यानी उसके साथ ताल्लुक नहीं करना। कोई नाराजगी हो गई, कोई झगड़ा हो गया, कोई भी ऐसा मसला हो गया, अब आदमी गुस्से के अंदर आ गया तो वो ये नहीं कर सकता, मैं सारी जिंदगी नहीं अब मैंने तेरे साथ कोई ताल्लुक रखना, या आदमी ने जाके दूसरी शादी कर ली है और वो आके कसम खा के कह देता है, अब वो बीवी कसम खिलवा लेती है जो दूसरी वाली है, अब वो कसम खा लेता है कि मैंने अब सारी जिंदगी पहली बीवी के पास नहीं जाना। तो नहीं, शरीयत कहती है नहीं जी, आप इसमें आजाद नहीं है कि आप एक को इस तरह लटकती हुई बेचारी छोड़ दें, आप कि वो बैठी हुई है आपके इंतजार में, और आप कह दें मैं सारी जिंदगी नहीं इसके पास आना, या मैंने साल भर नहीं इसके पास आना, या मैंने इस तरह नहीं, आपके पास 4 मंथ्स का टाइम है, बस 4 मंथ्स मैक्सिमम आप इसकी कसम खा सकते हैं, अगर कोई बहुत भी नाराज हो गया, 4 मंथ्स, 4 मंथ से ज्यादा नहीं आप कर सकते, ठीक है, 4 मंथ्स खत्म हो जाए अगर आदमी को आना पड़ेगा, अगर वो 4 मंथ से पहले आ जाता है वेल एंड गुड, कोई मसला नहीं है, ठीक है, लेकिन 4 मंथ से एक्सीड नहीं कर सकता, जब 4 मंथ हो जाए वो वापस आए अपनी बीवी के साथ ताल्लुक रखे, अगर वो 4 मंथ के बाद भी 4 मंथ गुजर जाते हैं नहीं ताल्लुक रखता, तो औरत के पास अब ये ऑप्शन है कि वो अदालत में जाए और अदालत इस आदमी को कहे, या तो तुम इस औरत के पास दोबारा जाओ और अदरवाइज तुम इसको तलाक दे दो। अब ये समझने की बातें हैं, जरा गौर से सुने, ठीक है? इसको गलत नहीं आपने समझना, वरना बड़ा गड़बड़ हो जाएगी। बाहर कहते हैं नहीं, 4 महीने बाद खुद बहुत तलाक हो जाती है, लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। जमहूर मेजोरिटी उलमा का यही है कि 4 महीने गुजरेंगे तो औरत जाए और जाके अदालत में कहे कि ये आदमी इस तरह मेरे से ताल्लुक खत्म करके बैठा हुआ है, और 4 महीने गुजर गए तो अब अदालत आदमी को मजबूर करे और उसको कहे कि तुम्हारे पास दो ऑप्शंस है, आइदर इस औरत को छोड़ दो क्योंकि तुम इसको लटकता हुआ नहीं छोड़ सकते, या दूसरा ऑप्शन है तुम इसके पास वापस जाओ। एक इससे बात हमें ये पता चलती है कि जो लोग ये फतवा लगा देते हैं ना कि भाई अगर 1 साल से कोई आदमी अपनी औरत के पास नहीं आया, तो कोई भी वजह हो सकती है, मसलन है कि वो कोई सफर पे गया हुआ था, किसी बैरूने मुल्क काम करता है, वो नहीं आया है, या इतना अरसा आदमी औरत दूर रहे हैं एक दूसरे से, बाहमी रजामंदी से ही कोई भी मजबूरी से, तो खुद ब खुद तलाक हो गई। ऐसा खुद ब खुद तलाक नहीं हो जाती, ठीक है? नंबर 2 बात कि कोई आदमी किसी औरत से दूर रहता है लेकिन उसने कसम नहीं खाई भी, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं आपको लिखवा रही हूँ, उसने कसम नहीं खाई भी, वैसे ही वो अपनी बीवी से दूर है, तो तब भी औरत के पास 4 महीने हैं, 4 महीने के बाद वो अदालत में जाके और वो खुला ले सकती है, वो कह सकती है कि ये आदमी मेरे साथ ताल्लुक नहीं रखता, और अदालत उसको मजबूर करेगी कि वो आइदर इसको तलाक दे दे या तो इसके साथ ताल्लुक रखे। कोई आदमी अपनी औरत को ऐसे लटकता हुआ नहीं छोड़ सकता कि उसकी बीवी भी है लेकिन उसके साथ कोई ताल्लुक नहीं रखता। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अपने जमाने खिलाफत में गश्त किया करते थे, तो वो जब गश्त पे निकले तो ये वो सुनते थे ना जैसे बातें घरों के पैर खड़े होके, तो वो सुन रहे थे बातें, एक औरत ना एक कसीदा पढ़ रही थी, एक पोएम पढ़ रही थी, और उस पोएम में उसने पूरी अपनी कैफियत बयान की कि मेरे ऊपर इस वक्त क्या गुजर रही है। यानी जाहिर ही बात है, अब उस जमाने के अंदर लोग जिहाद पे चले जाते थे और अरसा अरसा जिहाद पे रहते थे, पीछे उनकी बीवियां अकेली होती थी, तो वो कहती है कि अफसोस इन काली और लंबी रातों में मेरा खामिन नहीं है जिससे मैं हंसूं बोलूं, कसम अल्लाह की, अब ये उसके उसके जो अशआर है ना उनकी ट्रांसलेशन है कि कसम अल्लाह की अगर अल्लाह का खौफ ना होता तो इस वक्त इस बिस्तर के पाए हरकत में होते, यानी कोई और मर्द यहाँ पे होता मेरे पास। यानी जाहिर है औरत की भी एक नीड है ना, यानी वो हजरत उमर अब समझ गए, वो गए अपनी बेटी के पास हजरत हफ्सा के पास और फरमाया बताओ ज्यादा से ज्यादा औरत अपने खामिद के बगैर कितना अरसा तक सबर कर सकती है, तो फरमाती है 4 महीने या मैक्सिमम 6 महीने। तो आपने फिर ये हुक्म जारी कर दिया ताकि कोई मुजाहिद सफर में इससे ज्यादा देर तक नहीं रह सकता, यानी दे हैव टू कम बैक, 4 महीने से ज्यादा नहीं रह सकता वो वापस आए अपनी बीवियों के पास, क्योंकि इस तरह से औरत किसी फितने में पड़ सकती है, किसी गलत काम में पड़ सकती है। उसने कहा ना कि अगर खुदा का खौफ नहीं होता तो मेरे ये पलंग के पाए हिल रहे होते इस वक्त। तो इससे पता चलता है कि आदमी औरत को ऐसे नहीं छोड़ सकता। अच्छा, अगर कसम नहीं खाई भी और बाहमी रजामंदी है, मैंने आपको बताया मसलन है कि फॉर एग्जाम्पल कोई खामिन बीमार हो गया, तो अब 4 महीने क्या 6 महीने साल गुजर जाएंगे, वो बीमार है बिस्तर पे है, तो वो तो औरत की जरूरत पूरी नहीं कर सकता, वो औरत इसके ऊपर राजी है। या कोई आदमी है जिसने दूसरी शादी कर ली है और वो औरत कहती है मुझे तलाक ना दो, लेकिन मैं अपना हक के जौजिया तुम्हें माफ कर देती हूँ मुझे, लेकिन हाँ बस ऐसे ही रहने दो, तो वो भी कर सकती है। इसी तरह कोई मिसल है कि कोई दूर कहीं बैठे हैं मुल्कों के अंदर, अब वो मिल ही नहीं सकते, कोई इमिग्रेशन के प्रॉब्लम है, वीजों के प्रॉब्लम है, कोई कहीं जॉब करता है तो वो नहीं आ सकता, वहां से नहीं छुट्टी मिल सकती, और उसकी बीवी इस पे रजामंद है और वो कहती है कि मुझे इसमें कोई मसला नहीं, दोनों की रजा से है, तो फिर भी वो कर सकते हैं ऐसे कि इतनी देर दूर है। लेकिन हम इसके ऊपर ये नहीं फतवे लगा सकते अब इनकी खुद ब खुद तलाक हो गई क्योंकि इतने साल गुजर गए हैं, इनका आपस में कोई ताल्लुक नहीं हुआ, नहीं ये नहीं कर सकते, ऐसे खुद ही नहीं तलाकें हो जाती कि टाइम गुजरने से तलाक हो जाए और एक्सपायर हो जाए निकाह, तो ये हमने खुद ही बना लिया। हाँ, लेकिन अगर आदमी औरत के पास नहीं जाता किसी भी वजह से, चाहे वो इस काबिल नहीं है, वो नामर्द है, या वो नाराजगी की वजह से नहीं जा रहा, या कोई और ऐसा रीजन है जिससे वो औरत से कोई बदला लेना चाहता है, उसके पास तो दूसरी बीवी है, वो वहां चला गया, लेकिन इसको सजा देना चाहता है कि तेरे पास नहीं आऊंगा। तो अब औरत के पास हक है खुला का भी, कि वो खुला ले ले ऐसे आदमी के साथ कि वो नहीं। जैसे कोई एक प्रॉब्लम मेरे पास आया था, एक मसला, कि एक आदमी जेल में चला गया था और उसकी जेल की सजा कोई पता नहीं 25 साल वो कह रही थी या कितनी है। अब वो औरत कह रही थी कि मैं तो इतना अरसा नहीं रह सकती ना, तो उसके पास ऑप्शन है कि वो खुला ले ले। अब खुला और तलाक में क्या फर्क है, ये आपको पता है? खुला और तलाक में फर्क, खुला ये होता है कि औरत खुद जाके अदालत में कहती है कि मुझे इससे अलहदगी इख्तियार करनी है। तलाक में आदमी देता है ना। आप थोड़ी सी, मैं इसको फर्क आपको लिखवा देती हूँ। तलाक में हक मेहर शौहर नहीं वापस ले सकता, और खुला जो है उसमें वो वापस ले सकता है, वो डिमांड कर सकता है, औरत को वापस देना होगा क्योंकि औरत खुद तलाक मांग रही है। तलाक की जो इद्दत वो आगे आएगी 3 महीने या 3 हैज है, और खुला की 1 महीना या 1 हैज है, या प्रेग्नेंट है तो वजह हमल है। खुला के बाद निकाह हो सकता है, और तलाक उन्हीं का वापस, अगर उन्होंने अपने यानी दोबारा उसी शोहर के साथ निकाह हो सकता है, लेकिन जो तलाक मुगल्लजा है वो अभी मैं आपको बताऊंगी अगले अगली क्लास में इंशाल्लाह ताला, उसमें दोबारा निकाह नहीं हो सकता। खुला में रुजू नहीं कर सकता आदमी, तलाक में रुजू करने की ऑप्शन होती है उसके पास। आप लिख लें, ये चीजें आपको समझा दूंगी मैं, लेकिन फिलहाल आप लिख लें। खुला के बाद औरत उसी घर में नहीं रहती, जबकि तलाके रजई के बाद औरत उसी घर में भी रहेगी। ठीक है। एक औरत ने खुला इसलिए लिया था कि वो कहती थी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक्त में भी कि मैं इस आदमी के साथ रह के इसकी नाशुक्री बहुत करती हूँ, यानी नाकदरी बार बार करती हूँ। एक सबब ये भी हो सकता है कि आदमी जो है मारता पीटता है, ये भी एक खुला का रीजन हो सकता है। तो रीजंस हो सकते हैं कि जब औरत नहीं आदमी के साथ रहना चाहती है, उसका कोई जेन्युइन रीजन है, ऐसे नहीं कि ऐसे ही कोई खास रीजन नहीं है बस। ऐसी भी तलाकें आजकल होती हैं कि कोई ऐसा नहीं है तो फिर भी वो औरत नहीं रहना चाहती, ये नहीं होना चाहिए। कोई वाकई कोई रीजन हो तो फिर तलाक ली जा सकती है हमारे मजहब में, या खुला का मुतालबा किया जा सकता है। हमारे मजहब में ऐसा नहीं है जैसे हिंदुओं में है कि बस एक दफा शादी होगी तो जिंदगी भर इसी के साथ है, चाहे आप मरो चाहे जियो, तो मरना भी इसी के साथ है, जलना भी इसी के साथ है, ऐसी ऐसी चीज नहीं है। ठीक है। अगर नहीं वो उसके साथ समझती है कि इसके साथ रह के मैं इसकी भी नाशुकरी करती हूँ और अल्लाह की भी नाशुकरी कर रही हूँ, तो फिर वो उससे खुला ले सकती है। अच्छा, तो अब हमने ये पढ़ा कि 4 महीने तक उसके पास इजाजत है, यानी अल्लाह ताला ने आदमी को, देखें यहाँ पे भी औरत की अल्लाह ताला ने हिमायत की है, कि आदमी को कहा गया है कि तुम अपने आप को ऐसे ना समझो कि निकाह करके इसको बांधा में ना, वो बेचारी कहीं और जाके शादी कर सकती है, कि कहीं और चली जाए, किसी और के साथ बंध जाए ना, वो यहाँ पे उसको कोई उसके हकूक अदा किए जा रहे हैं, तो ये तुम काम नहीं कर सकते। 4 महीने से ज्यादा तुम उसको नहीं छोड़ सकते। तो ये चीज आदमियों को पता होनी चाहिए। फइन फाउ फइन अल्लाह गफूर रहीम, फिर अगर वो रुजू कर लें, वो लौट आए, तो अल्लाह गफूर रहीम है। ठीक है, अब जो हो चुका यानी 4 महीने के अंदर अंदर आ जाते हैं, तो अब उनको कोई इस चीज की जो पहले उन्होंने कसम खाई थी उसके लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है। कसम का कफारा अदा करें और अल्लाह माफ करने वाला है। वह इन आजम तलाका, और अगर वो आजम कर लेते हैं तलाक का कि अब कसम खा ली भी है और उसके बाद दिल में इरादा पूरा कर लिया कि मैंने इसको तो तलाक ही दे के रखा छोड़नी है, तो फाइन अल्लाह समीउन अलीम। तो तलाक तो मुंह से बोली जाती है ना, अब दिल में इरादा तो बोला नहीं जाता, लेकिन अल्लाह उस इरादे को भी सुनने वाला है और जानने वाला है। तुम चाहे बोल के नहीं भी तुमने अभी उसको बताया, उस औरत को बताने से पहले अल्लाह को पता है, अल्लाह ने सुन लिया तुम्हारी बात। और ये भी हमें इससे पता चलना चाहिए कि अल्लाह ताला समीउन अलीम है, क्योंकि इन मामलात में ना लोग एक दूसरे के ऊपर इल्जामात बहुत लगाते हैं, खुद को कहते हैं हम हक पे हैं, ये ऐसे है वो वैसे है। तो याद रखो हर बात को अल्लाह सुनता है, और जो तुम्हारे जहन में ख्याल भी आता है ना, अल्लाह उसको जानता है, और इसमें बहुत ज्यादतियां हो जाती हैं। और बहुत इल्जाम तराशियां होती हैं, और अपने आप को सच्चा किया जाता है, दूसरे को झूठा किया जाता है। तो अल्लाह ताला तो सब सुनने जानने वाला।